ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिपक्षी रासपा और राप्रपा के विरोध के बीच प्रतिनिधि सभा में बजट पर हुआ सामान्य विचार विमर्श। इस मॉनसून में अधिक बारिश होने की ओर आगाह करते हुए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण ने सावधानी अपनाने की है अपील। और इसराइल व ईरान के बीच तनाव है बरकरार, अब तक 224 ईरानी नागरिकों की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने विनियोजन विधेयक 2082 पर विमर्श करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। आज की बैठक में राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2082 पेश हुआ। बैठक में आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट पर सामान्य विचार विमर्श भी हुआ। विमर्श के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देते हुए उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि बजट आकार और स्रोत के हिसाब से यथार्थपरक और क्रियान्वयन योग्य है। बैठक में बजट के साथ साथ विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सांसदों ने सरकार और सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। इस दौरान नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद शक्ति बहादुर बसनेत ने कहा कि विजिट वीजा का मामला आम सरोकार का मुद्दा बन चुका है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार 30 दिन के अंदर छानबीन समिति बनाकर काम शुरू कर देने का उद्घोष कर चुकी है, उन्होंने तत्काल समिति गठित कर जांच आगे बढ़ाने का सरकार से आग्रह किया। बता दें कि प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में भी प्रतिपक्षी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने विजिट वीजा का मुद्दा उठाकर अपने विरोध को जारी रखा। बैठक में राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने विरोध के बीच जबरदस्ती बैठक संचालन न करने का सभामुख से आग्रह भी किया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने केंद्र से लेकर स्थानीय तह तक सभी निकायों से मॉनसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रीय कार्य योजना 2082 अनुसार काम करने का अनुरोध किया है। इस साल के मॉनसून में देश के ज्यादातर स्थानों में अधिक बारिश होने के पूर्वानुमान को देखते हुए पूरी तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्राधिकरण ने सभी से अनुरोध किया है। ये बात प्राधिकरण के प्रवक्ता राम बहादुर केसी ने बताई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए गृहमंत्री रमेश लेखक को निर्देश किया है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ आज सिंह दरबार में हुई चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रधानमंत्री ओली ने तोड़फोड़ में शामिल किसी को भी छूट न दिए जाने की ओर गृहमंत्री लेखक का ध्यान आकृष्ट किया। विश्वविद्यालय के निमित्त उपकुलपति प्रोफेसर डॉ खड्ग केसी ने कुलपति ओली को एक लिखित पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करके शांतिपूर्ण वातावरण बनाया जाना चाहिए। साथ ही ये बताते हुए कि तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद गिरफ्तार दोषियों को रिहा कर दिया गया, उन्होंने चिंता भी जताई। उन्होंने ये भी सूचित किया कि असुरक्षा के कारण वर्तमान में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कीर्तिपुर से बाहर से ही सेवाएं संचालित कर रहे हैं। पिछले फागुन 21 गति को कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय के शिक्षाध्यक्ष और विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान के डीन के कार्यालयों और प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस में और पिछले जेठ 14 को कीर्तिपुर स्थित उपकुलपति के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति के विषय में जानकारी कराई। मंत्री खड़का ने आज राष्ट्रपति पौडेल को 140 मेगावाट क्षमता वाली तनहू जलविद्युत तथा 126 मेगावाट की निचली स्थिति परियोजना की प्रगति के विषय में बताया। ये जानकारी राष्ट्रपति के निजी सचिवालय ने दी। भौगोलिक रूप से दुर्गम माने जाने वाले भोजपुर की षडानंद नगर पालिका वार्ड नंबर 10 सांपांग में केंद्रीय विद्युत का विस्तार हुआ है। अब तक ढिबरी और लालटेन के सहारे रात गुजारने वाले वहां के 85% नागरिकों के घरों में अब केंद्रीय विद्युत आपूर्ति पहुंच गई है। केंद्रीय विद्युत विस्तार होने के बाद वहां के नागरिकों की सदियों पुरानी ढिबरी पर निर्भर होने की मजबूरी का अंत हो जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाजे।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि सूचना प्रविधि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र, प्रदेश और स्थानीय तीनों तहों की सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस 2082 की समीक्षा बैठक में मंत्री गुरुंग ने कहा कि सूचना प्रविधि का विकास स्थानीय तह तक व्यापक रूप में पहुंचाना चाहिए। मौके पर मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल ने कहा कि आईटी क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने आईटी इंटर्नशिप के लिए बजट भी आवंटित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच चिंताजनक खबर सामने आई है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार हाल के संघर्षों में 224 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में इसराइल ने ईरान के दमिश्क सीरिया में स्थित दूतावास पर हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान के कई सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागे, जिनमें से अधिकांश को इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। अब इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में जवाबी हमला किया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 224 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने भी दावा किया है कि ईरानी हमलों में उसके कुछ नागरिक घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युद्धविराम की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इसराइल को संयम बरतने की सलाह दी है। रूस और चीन ने ईरान का समर्थन किया है और इसराइल पर आक्रामकता बढ़ाने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता अपनाने का आग्रह किया है। इसराइली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों से एक महत्वपूर्ण इलाके को तुरंत खाली करने को कहा है। इसके लिए सेना ने तत्काल चेतावनी जारी की है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF के प्रवक्ता अविचाय एद्राई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आने वाले घंटों में IDF इस क्षेत्र में कार्रवाई करेगा, जैसा कि उसने हाल के दिनों में तेहरान में किया है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ईरानी शासन के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया जा सके। वहीं पश्चिमी तेहरान में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिमी तेहरान में शहर की एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया गया है, जबकि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि इसराइल ने इस क्षेत्र में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। इस बीच इसराइल ने दावा किया है कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है और उसने उसके एक तिहाई मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले हफ्ते किए गए हमलों में उसने ईरान के 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया, जो ईरान के पास मौजूद कुल मिसाइल लॉन्चरों की एक तिहाई संख्या है। उन्होंने कहा कि इसराइल पर मिसाइल दागने से कुछ ही मिनट पहले वायुसेना ने कल रात ईरान के 20 से ज्यादा विमानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इसराइल ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। साथ ही इसराइली सेना ने यह भी दावा किया कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर इसराइल का पूर्ण नियंत्रण है। इसराइल और ईरान तनाव के बीच गजा से खबर आई है कि वहां 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये लोग उन इलाकों में मारे गए हैं जहां गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही थी। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दावा किया है कि रफाह के एक सेंटर के पास इसराइली गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। हालांकि इसराइली सेना के हवाले से BBC ने बताया है कि वो रिपोर्टों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गजा में एक और अन्य GHF साइट के पास खाने का इंतजार कर रहे दो फलस्तीनी लोगों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि गजा में इसराइल के युद्ध के तरीके भयावह और अमानवीय पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिपक्षी रासोपा और राप्रपा के विरोध के बीच प्रतिनिधि सभा में बजट पर हुआ सामान्य विचार विमर्श। इस मॉनसून में अधिक बारिश होने की ओर आगाह करते हुए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण ने सावधानी अपनाने की है अपील। और इसराइल व ईरान के बीच तनाव है बरकरार, अब तक 224 ईरानी नागरिकों की हो चुकी है मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।